पृष्ठ संख्या 9। सैन्य विभाग को 5 कमीशनों में उप विभाजित किया गया था। महत्वपूर्ण उच्च पदों पर संघीय अधिकारियों की नियुक्ति केवल सम्राट करता था। इन अधिकारियों को महासचिव, ग्रैंड सेक्रेटरीज कहा जाता था, क्योंकि ये शाही शक्ति के एजेंटों के रूप में कार्य करते थे। चीनी समाज को शाही विचारों के अनुरूप ढालने तथा उसे स्थिरता प्रदान करने के लक्ष्य से मिंग सम्राटों ने शाही आचार विधि को तैयार किया था। आम जनता के लिए एक अलग मिंग संहिता बनाई गई थी। उत्तराधिकार कानून, लॉ ऑफ सक्सेशन के अंतर्गत राजकुमारों के पदों को बांटा जाता था। समय समय पर आर्थिक और फौजदारी मामलों से संबंधित राजकीय आदेश निकाले जाते थे। सभी कानून और संहिताएं कन्फ्यूशियस के विचारों, आचारों तथा कथनों पर आधारित होते थे। मिंग वंश के पतन व छिंग वंश के उदय का मुख्य कारण 1630 और 1640 में हुए भीषण कृषक विद्रोह थे। मिंग शासन के दौरान मांचू एक असंगठित कबीला प्रधान गुट था, जिसने समय और अवसर का लाभ उठाते हुए धीरे धीरे अपनी सैन्य शक्ति को मजबूत किया। मिंग शासकों ने विजातीय बर्बर और सभ्य तत्वों को मिलाकर प्रशासकीय ढांचा तैयार किया, जिसमें न्यायपूर्वक और तर्कसंगत तरीके से परंपरागत कबीला प्रधान तत्वों, संघीय संस्थाओं तथा अन्य नए ढंगों को अपनाया गया। मिंग शासन का भौगोलिक विस्तार क्षेत्र चीन के दक्षिणी तट से लेकर उत्तर में मंचूरिया और फिर पूर्व में चीन सागर से पश्चिम में सिनचियांग क्षेत्र तक फैला हुआ था। इसके अतिरिक्त तिब्बत तथा मंगोलिया ने भी चीन शासकों के प्रभुत्व को स्वीकार किया होगा, ने भी चीन शासकों के प्रभुत्व को स्वीकार किया हुआ था। चीनी लोग की तुलना में मांचुओं की संख्या बहुत कम थी, इसलिए अपनी राजनीतिक शक्ति को बनाए रखने के लिए मांचू शासकों ने प्रशासकीय व्यवस्था में मूलभूत परिवर्तन किए थे। पृष्ठ संख्या 10। यह व्यवस्था मांचू चीनी द्विशासन प्रणाली डायार्की पर आधारित थी। केंद्रीय सरकार के 6 विभागों के प्रमुखों की नियुक्ति दो दो अधिकारियों की भर्ती से की जाती थी, जिनमें एक मांचू व दूसरा चीनी होता था। चीनी अधिकारी संघीय प्रशासन को संभालते थे तथा मांचू राजनीतिक स्थिरता को बनाए रखते थे। प्रशासन में सबसे बड़ा विभाग महासचिवालय, ग्रैंड सेक्रेटरियट होता था, लेकिन 18वीं शताब्दी में एक नया विभाग स्थापित किया गया, जिसे महापरिषद कहते थे। इनमें से कुछ प्रमुख अधिकारी समय समय पर शासक से मिलकर विशेष मामलों को सुलझाने का प्रयत्न करते थे। उच्च पद केवल मांचुओं, मंगोलों तथा विश्वसनीय चीनियों को ही दिए जाते थे। प्रत्येक दो प्रांतों के लिए एक मांचू गवर्नर जनरल की नियुक्ति की जाती थी, जो दोनों प्रांतों के गवर्नरों पर नियंत्रण रखता था। पताका सेना वैनर फोर्स को मांचू नियंत्रण के अंतर्गत विभिन्न प्रांतों में तैनात किया जाता था। दरबार का सारा कार्य द्विभाषीय रूप मांचू और चीनी भाषा में किया जाता था। मंगोलिया, तिब्बत और चीनी तुर्किस्तान के साथ संबंधों की स्थापना और देखरेख आश्रित क्षेत्रों के अधिकारियों द्वारा की जाती थी। प्रयत्न हमेशा यही रहता था कि चीन साम्राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का निरंतर विस्तार किया जाए। लामावाद, लेमिज्म को साम्राज्यिक सहयोग दिया था, क्योंकि वह धर्म मंगोलों तथा तिब्बतियों के लिए महत्वपूर्ण था। चीन की जनता के समक्ष मांचू सम्राट कन्फ्यूशियन विचारों के समर्थक बनते थे। परीक्षा प्रणाली पर नियंत्रण स्थापित करके शासकों ने शिक्षा व्यवस्था, विद्वानों की गतिविधियों और उनकी रचनाओं को अपने प्रभाव में कर लिया था, ताकि इस वर्ग में आक्रोश और विद्रोही भावनाओं का विकास न हो। समाज, सोसाइटी। चीनी समाज भौगोलिक विशालता, जनसंख्या, संस्कृति, भाषा तथा जलवायु की विभिन्नता के बावजूद लगभग 2000 वर्षों तक एक कड़ी के रूप में स्थापित रहा। नवपाषाण युग से ही कृषि आम जनता की आय का प्रमुख स्रोत रही, किंतु समय समय पर बर्बर आक्रमणों और प्राकृतिक विपदाओं के कारण अर्थव्यवस्था के नए तरीकों को भी अपनाया गया। लगभग 10वीं शताब्दी के पश्चात वाणिज्यिक कृषि अंतर क्षेत्रीय व्यापार का विकास किया गया। राजकीय वर्ग की आय के दो प्रमुख स्रोत थे, भूमि तथा वाणिज्य, लेकिन भूमि को अधिक महत्वपूर्ण माना जाता था। चीनी समाज के मूलभूत स्वरूप को लेकर इतिहासकारों में काफी मतभेद पाए जाते हैं। मार्क्सवादी इतिहासकारों के अनुसार भूस्वामियों द्वारा कृषकों का शोषण इस बात का परिचायक है कि चीनी समाज सामंतवाद, फ्यूडलिज्म तथा नौकरशाही ब्यूरोक्रेसी पर आधारित था। कार्ल वेटफोगल की दृष्टि में चीन का समाज पूर्वी तानाशाही के स्वरूप पर आधारित था, जिसमें एक केंद्रीय अखंडित सरकार बहुसंख्यक कृषकों पर नियंत्रण रखने के लिए बड़े स्तर के सभी नागरिक कार्यों का संचालन स्वयं करती थी। इतिहासकार सीयू के अनुसार चीन का राज्य निरंकुश राजतंत्रवाद था, तथा कुछ अन्य विद्वानों की दृष्टि में संभ्रांत वर्ग जेंट्री पर जॉन किंग फेयरबैंक के अनुसार प्राचीन काल के चीन को दो भागों में बांटा जा सकता है, शहरी व ग्रामीण क्षेत्र। यही सिद्धांत सामाजिक विभाजन पर भी लागू किया गया था। बहुसंख्यक जनता कृषकों की थी, जो ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते थे, तथा दूसरी ओर अल्पसंख्यक संभ्रांत व अन्य शहरी वर्ग थे। शिव का कोई सरल विभाजन संभव नहीं है। शिव इस सिद्धांत पर टिप्पणी करते हुए कहते हैं कि चीन के सामाजिक वर्गों का कोई सरल विभाजन संभव नहीं है, क्योंकि यह दोहरे ध्रुवीकरण बायपोलराइजेशन पर आधारित राज्य था, जिसमें एक ओर शासक तथा दूसरी ओर शासित वर्ग था। इसके अतिरिक्त यह एक बहुवर्गीय समाज, जिसमें चार प्रमुख व्यवहारिक श्रृंखलाएं फंक्शनल ऑर्डर एक साथ थे। इसके अतिरिक्त यह एक बहुवर्गीय समाज था, जिसमें चार प्रमुख व्यवहारिक श्रृंखलाएं फंक्शनल ऑर्डर एक साथ स्थापित हुई थी। संभ्रांत, कृषक, कलाकार तथा व्यापारी वर्ग, इनके ऊपर सरकारी अधिकारी तथा नीचे वर्गहीन व गरीब लोग, डिक्लास्ड एंड डिग्रेडेड पीपुल थे। वैसे तो यह वर्गीकृत सेटिस्फाइड समाज था, लेकिन एक तरह से यह समानतावादी भी था, क्योंकि इसमें कोई वर्ण प्रणाली, कास्ट सिस्टम नहीं थी, तथा सामाजिक संगठन काफी लचीला था। बिना किसी परिवार, जन्म व धार्मिक मतभेद के सभी को परीक्षा में बैठने तथा अपने सामाजिक स्तर को ऊंचा करने का अधिकार प्राप्त था। पृष्ठ संख्या 12। जीन सोजनो के अनुसार संभ्रांत वर्ग एक विद्वान अधिकारी शासक वर्ग, स्कॉलर ऑफिशियल रूलिंग क्लास था, जिसके पास शक्ति, ज्ञान तथा भूमि होती थी। इस वर्ग का विकास उस एशियाई परंपरा, एशियाटिक ट्रेडिशन पर आधारित था, जहाँ वर्ग की परिभाषा तीन तत्वों और पदों पर निर्भर करती थी: राजनीति, अर्थव्यवस्था तथा शिक्षा। बैरिंगटन मयूर जूनियर के अनुसार भूमि संपत्ति डिग्री प्राप्तकर्ता तथा राजनीतिक वर्ग के बीच चीन में एक विशेष संबंध होता था। इन तीनों तत्वों को जोड़ने वाली कड़ी परिवार अथवा पितृ प्रधान वंश होता था। परिवार को अपना वंशगत, सामाजिक तथा राजनीतिक अस्तित्व बनाए रखने के लिए भूमि का निवेश करना पड़ता था। एक डिग्री प्राप्तकर्ता की उपस्थिति अपने परिवार के भौतिक सुखों तथा वंश के उच्च स्तर को बनाए रखने के लिए भी आवश्यक थी। वैसे तो शिक्षा प्रणाली सभी वर्गों के लिए खुली हुई थी, परंतु शिक्षा प्राप्त करने की व्यवस्था केवल उच्च वर्ग के लोगों को ही उपलब्ध थी। इसलिए चीन के समाज में वंश के आधार पर ही पद और धन को प्राप्त किया जा सकता था। इसी आधार पर यह भी कहना उचित होगा कि उच्च वर्ग के गठन में विद्वान अधिकारी के रूप में और भूस्वामी संभ्रांत व्यक्ति के रूप में कार्य करता था। संभ्रांत वर्ग के उदय के पीछे मुख्य कारण पूर्ववर्ती हान से लेकर छिंग वंश के शासनकाल तक जनसंख्या का बढ़ते हुए घनत्व अनुपात के अनुसार क्षेत्रीय प्रशासन के विस्तार का अभाव था, जबकि जनसंख्या का विस्तार नए नए क्षेत्रों में होता रहा। अतः थांग युग में संभ्रांत वर्ग का विकास अतः थांग युग में संभ्रांत वर्ग का विकास पूर्ववर्ती नौकरशाही राज्य तथा चीन के समाज के बीच शून्यता के स्थान पर मध्यस्थता की भूमिका निभाने के लिए किया गया था। संभ्रांत वर्ग ने अपना अधिकार जमाने के लिए चार माध्यमों का सहारा लिया था, भूमि का मालिक बनकर, अधिकारी पद प्राप्त करके, शिक्षित बनकर तथा चीनी भाषा में प्रगाढ़ता को हासिल करके। परंपरागत चीन के समाज में तीन स्तरीय परीक्षा को उत्तीर्ण कर लेना ही सबसे बड़ी सफलता मानी जाती थी। इस तरह फेयर बैंक के अनुसार संभ्रांत वर्ग का ढांचा न केवल लचीला था अपितु अपने ही वर्गहीनता और शासक पर आधारित होकर समाज को सुदृढ़ प्रदान करता था। इस विद्वान संभ्रांत वर्ग को कुछ विशेष कर्तव्यों को संपन्न करना पड़ता था, जैसे करों तथा अन्य लगानों की वसूली करना, दूसरा अस्पताल, सिंचाई व्यवस्था, धार्मिक स्थलों व कन्फ्यूशियस के विचारों, संस्थाओं तथा नैतिक मूल्यों, निर्माण और सुरक्षा की देखभाल करना, न्यायालय के बाहर लोगों के झगड़ों का समाधान करना, प्रशासन तथा आम जनता के बीच शांति कायम करने के लिए मध्यस्थता की भूमिका निभाना व आवश्यकता पड़ने पर सैनिकों का संगठन तैयार करना। पृष्ठ संख्या 14। चीन के कृषकों की स्थिति क्षेत्रीय विभिन्नताओं पर निर्भर करती थी। मार्क्सवादी इतिहासकारों के अनुसार शासकीय वर्ग करों, लगानों तथा बंधुआ मजदूरी के द्वारा कृषकों पर अत्याचार करते थे। गैर मार्क्सवादी इतिहासकारों में रेमन मेयर जैसू का यह कथन है कि कम उत्पादन, कम मुर्गी, पुरानी कृषि तकनीकों का गलत प्रयोग यानी पूंजी की कमी, नई तकनीकों का उपयोग न किया जाना, प्राकृतिक बाजार के बढ़ते हुए मूल्य ही प्रकृति पर नियंत्रण करने का प्रयत्न करना, यातायात के प्राचीन तरीके तथा बाजार के बढ़ते हुए मूल्य ही कृषकों की दरिद्रता के प्रमुख कारण थे, जो उन्हें शोषित होने पर मजबूर करते थे। आज इस कथन को स्वीकार नहीं किया जा सकता। अधिकतर इतिहासकार इस कथन से सहमत है कि चीनी कृषक शोषित तथा गरीब था। जनसंख्या में वृद्धि के कारण, अपर्याप्त होती भूमि के कारण, कृषक भूस्वामियों की बढ़ती हुई मांगों, राज्यों के करों के बोझ तथा बंधुआ मजदूरी के दलदल के बीच फंसते चले गए। शांति के समय में ही कृषकों की स्थिति में सुधार होने की बजाय करों की मांग में वृद्धि हो जाती थी। राजनैतिक अस्थिरता के समय सरकारी अधिकारियों पर नियंत्रण न होने के कारण शोषण चरम सीमा तक पहुँच जाता था। प्राकृतिक विपदा के समय में भी स्थिति शोचनीय होती थी, क्योंकि सरकारी सहायता प्रदान नहीं की जाती थी। परिणाम जन असंतोष, गरीबी तथा भुखमरी होता था, जिसकी वजह से कृषक गुप्त संस्थाओं का निर्माण करके लूटपाट, डकैती, कृषक विद्रोह तथा अधिकारी तंत्र व शासकीय वंश के विरुद्ध बड़े पैमाने पर आंदोलन की शुरुआत करते थे। इसलिए गुप्त संस्थाओं को कुचलने के लिए शासक अपनी पूरी शक्ति का उपयोग किया करते थे। आर्थिक गतिविधियों के रूप में वाणिज्य को अत्यंत नीचा स्थान दिया गया था। प्राचीन चीन के साहित्य में व्यापारी वर्ग को सामाजिक श्रृंखला में सबसे निम्न स्थान दिया गया था। यह वास्तविकता में एक सुरक्षात्मक कवच था, जिसके द्वारा समाज को अन्य आर्थिक शक्तियों से बचाने का प्रयत्न किया गया, ताकि समाज का संतुलन न बिगड़ जाए। यही कारण है कि व्यापारी वर्ग अपनी पूंजी का निवेश भूमि को खरीदकर, परीक्षा उत्तीर्ण करके या फिर डिग्री खरीदकर अपना सामाजिक दर्जा ऊंचा करने का प्रयत्न करते रहते थे। यह तथ्य इस बात का प्रमाण है कि चीन के समाज में व्यापारी वर्ग को पिछले द्वार से प्रवेश प्राप्त था, तथा व्यापारी संभ्रांत और अधिकारी तंत्र के बीच सीधा संबंध था। व्यापारियों का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं था, जबकि राज्य सभी वाणिज्यिक गतिविधियों पर सीधा नियंत्रण रखता था। किसी भी बड़े व्यापार को शुरू करने के लिए राज्य और अधिकारियों की सहायता तथा सहयोग की आवश्यकता होती थी। इसी कारण बड़े व्यापारी राज्य के एजेंट के रूप में तथा व्यापारिक श्रेणियां, मर्चेंट गिल्ड्स और संगठन अपने सहयोगी समुदायों के रूप में कार्य करते थे। फलस्वरूप व्यापारिक श्रेणियां कभी भी संघर्ष का केंद्र नहीं बन पाई थी। अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी। चीन में भूमि अधिकार के दो स्वरूप थे। पहली निजी भूमि जो भूस्वामियों के नियंत्रण में होती थी तथा दूसरी वह जिस पर राजकीय परिवार, सरकारी जागीरों व धार्मिक संस्थाओं का सामूहिक अधिकार माना जाता था। क्योंकि भूमि भूस्वामियों के नियंत्रण में होती थी तथा कृषक उस पर श्रम करते थे, अतः कृषकों को भूमि से लगाए रखने की आवश्यकता थी। इस प्रणाली में बढ़ती हुई जनसंख्या का लाभ भूस्वामियों को मिलता था, क्योंकि अधिक जनसंख्या का अर्थ था अधिक लाभ। किंतु भूस्वामियों को एक शक्तिशाली सरकार की आवश्यकता भी होती थी, ताकि सरकार उनकी संपत्ति के अधिकारों तथा लगानों की वसूली के अधिकारों को सुरक्षित रख सके। यह कार्य शाही अधिकारी तंत्र, इंपेरियल ब्यूरोक्रेसी द्वारा किया जाता था। चूंकि धन तथा अधिकारी तंत्र एक दूसरे पर निर्भर करते थे, इसलिए भूस्वामी के लिए अपने किसी एक पुत्र का संघीय व्यवस्था में होना आवश्यक था। लगभग 8वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक चीन में कृषक औजारों, पशुपालन, चाय, कपास के उत्पादन के क्षेत्र में नई कृषि तकनीकों का विकास किया गया। सुई थांग युग में नए प्रकार का हल बनाया गया, जिसके 11 हिस्से होते थे तथा उनको अलग अलग प्रकार की गहराई प्राप्त करने के लिए ऊपर नीचे किया जा सकता था। प्रारंभिक मिंग शासन के दौरान अधिकाधिक भूमि को जुताई के काबिल बनाने के लिए प्रयास किए गए थे।